الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدری چینل کے ناظرین پروگرام سبق آپ اس خبریں لیے حاضر ہوں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد آئیے سب سے پہلے جھلکیاں دیکھتے ہیں
ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستانیوں نے 120 ارب روپے کی اینٹی بایوٹک استعمال کی
اینٹی بایوٹکس کے اوپر خاص طور پہ زیادہ زور ہوتا ہے کہ اینٹی بایوٹکس اگر جب دی جاری ہوتی ہے تو وہ ایک خاص پیریڈ کے لیے دیتے ہیں جس میں 4 دن 5 دن ہفتہ 10 دن 15 دن
ایک بوڑھی عورت سے کار چھیننے والا مجرم کچھ دیر بعد اسی کار میں حادثے سے ہلاک ہو گیا مصر سے ایک انتہائی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے جہاں اپنے بھائی کی شادی کی خوشی میں دیگر مہمانوں کے ہمراہ ڈانس کرتے ہوئے نوجوان کو اچانک دل کا دورہ پڑا خون اور پلازما عطیہ کرنا بہت مفید ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی تیز رفتار اور مصنوعی زندگی میں کوئی بھی ان کیمیائی اجزاء سے محفوظ نہیں
ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا کون سا بندہ خون دے سکتا ہے کون سا نہیں دے سکتا
فلموں کا شوقین ویب سیریز اور جادوئی طاقتوں سے متاثر لڑکا عمارت سے کود کر ہلاک پولیس نے بتایا کہ لڑکی نجی کالج میں ڈی فارمیسی فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی میڈیکل کالج کی طالبہ کی مبینہ خودکشی کے معاملے پر ڈی ایس پی نے بتایا کہ والدین کے مطابق بچی اکثر کہتی تھی کہ تعلیم سخت ہے کھچڑی میں نمک زیادہ ہونے پر شوہر نے بیوی کا گلا دبا کر مار ڈالا تقریباً 60% بالغ افراد اور ایک تہائی بچے زیادہ وزن یا موٹاپے کا شکار ہیں دوران سجدہ شہری خالق حقیقی سے جا ملا پاکستان سمیت ترقی پذیر ممالک میں سماج سے متاثر افراد کی تعداد بڑھنے کی وجہ شور کی آلودگی ہے
فیصل آباد میں مختلف مقامات پر پیش آنے والے ٹریفک حادثات کے دوران ماں بیٹے سمیت 5 افراد جاں بحق
کار اور وین میں تصادم خاتون اور بچی سمیت 6 افراد جاں بحق
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یہ کچھ جھلکیاں آپ نے ملاحظہ کی ہیں سبق قاموس خبریں ہیں اس کا جو آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارا ایک معاشرتی سسٹم ہے جو باہر کا سارا نظام ہے اور وہ ہے شور کی وجہ سے جو اس وقت بہت سارے پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں اس کو نوائز پولوشن کہتے ہیں شور کے ساتھ اب یہ شور جو ہے نا یہ ہر طرح کا ہے باہر ہم جاتے ہیں ہارن کا شور ہے اچھا دیگر آوازوں کا شور ہے گاڑیوں کا شور ہوتا ہے اور ایون کہ آپ جو پنکھے کے نیچے بیٹھے ہیں تو پنکھے کی بھی ایک اپنی آواز ہے اس کا بھی ایک اپنا شور ہے سم ٹائم آپ کو کوئی چیز ریکارڈ کرنی ہوتی ہے یا کچھ بات آپس میں کرنی ہوتی ہے اور نہیں کر سکتے تو آپ کہتے ہیں ایک دوسرے کو یا ذرا پنکھا بند کر دو بات کر رہے ہیں نا آواز پرابلم کر رہی ہے آواز پہنچ نہیں رہی ہے تو یہ ایک شور ہے نوائز ہے نوائزنگ ہے تو اس کے بھی کچھ نہ کچھ سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں جس سے بچنے کی ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی صورت نکالنی پڑتی ہے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی ہے حالات جس طرح چینج ہو رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ معلومات دینی ضروری ہوتی ہے کہ اس سے بچنے کی صورت کیا ہوتی ہے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں اگر آپ نے جہاز میں سفر کیا ہو ایئر کرافٹ میں آپ بیٹھے ہوں تو کبھی آپ ونڈو سے کھڑکی سے آپ دیکھیں گے تو بالکل ایئر کرافٹ کے پاس جہاز کے پاس ایک شخص یا ایک دو تن شخص نظر آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے اپنے سر پر ایک ہیڈ فون لگایا ہوا ہوتا ہے کان پر بالکل وہ جو ہیڈ فون ہے یہ اتنا ایئر ٹائٹ ہے کہ یہ بیسیکلی یہ مطلب کہ وائس پروف آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کسی حد تک ٹھیک ہے میں نے ایز اے چیکنگ کے طور پر چیک کے طور پر میں نے اس کو پرسنلی طور پر اس کو میں نے یوز کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ جہاز کے پاس جب جہاز اسٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے جو انجن اس کا فین جب چل رہے ہوتے ہیں تو یہ آواز بہت زیادہ ہوتی ہے نا ایک جرنل آدمی اتنی وائس پر کھڑا نہیں رہ سکتا تو ایز اے میڈیکل پریکوشن احتیاطی طور پر اس وہاں کھڑے ہوئے پر یہ اس کی ایس او پی ہے ود آؤٹ دس اکوپمنٹ نو بڈی کین الاؤ وہ وہاں پر اس کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں پر کھڑا ہو سکے تو یہ एक ये इसलिए है ताकि इसके आवाज से इसके कान मुतासिर ना हो, वरना थोड़े अरसे में बंदे के कान सुनने की सलाहियतें कम हो जाती हैं। सुनने की सलाहियत जो कम होती है ना, इसमें भी एक छोटी सी एक मैं बात आपको बता चलो, बात होकर ये नहीं होता कि आदमी पूरा नहीं सुन पाता। मैंने इसी तरह के प्रोग्राम में डॉक्टर ने हमें बताया था, जो मुझे याद आ रहा है, मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स कोई बात कर रहा है, मैंने कहा बात कर रहा है, ये मैंने जैसे आपको जुमला कहा, तो किसी के कान का सुनने वाली पोजीशन में नहीं रहते, बात रहा है का नहीं सुनेगा वो, ता नहीं सुनेगा वो। इसी तरह बातों का टी नहीं सुना जाता, एल नहीं सुना जाता, एम नहीं सुना जाता, तो एन नहीं सुना जाता, आप बोलो नेशन तो बोलेगा एशन, तो यूं हो जाता है कि समटाइम यही भी होता है कि आपके कान पूरे के पूरे वर्ड नहीं सुन सकते, ऐसा नहीं होता। सम अल्फाबेट्स ऐसे होते हैं, कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जो आपका कान नहीं सुन पाता, ये डिजीज है और ये कान की एक कान का प्रॉब्लम है। तो ये जो कान में जो प्रॉब्लम शुरू होता है, इसकी एक वजह शोर है। इस शोर पर जो हमारे पास रिपोर्ट है, आइए वो रिपोर्ट देखते हैं।
शोर की आलूदगी से समाज के अमराज बढ़ने लगे, माहिरीन तिब नाक कान और हलक से मुतालिक अमराज के माहिरीन ने कहा है कि समाज के अमराज में मुब्तला अफराद की मौजूदा तादाद 45 करोड़ है, जो कि 2050 में 90 करोड़ हो जाएगी। पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर मुमालिक में समाज से मुतासर अफराद की तादाद बढ़ने की वजह शोर की आलूदगी है, जिसे कंट्रोल किए बगैर हम समाज से मुतासर अफराद की तादाद कम नहीं कर सकते। WHO ने भी इस खदशे का इजहार किया है कि जल्द ही दुनिया में 1 अरब अफराद समाज के मसाइल के शिकार होने वाले हैं। ये बातें आलमी यौम समाज पर कराची में मुनाकिदा अलग अलग सेमिनार्स में कही गई। माहिरीन ने कहा कि दुनिया में आलमगीर वबा कोरोना के बाइस घर बैठे ऑनलाइन काम करने वाले अफराद की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में खदशा है ऑनलाइन काम करने वाले अफराद अक्सर समाज के मसाइल का शिकार हो सकते हैं। माहिरीन ने ऑनलाइन काम करने वालों को मशवरा दिया कि काम के दौरान हर 1 घंटे बाद 10 मिनट का वक्फा जरूर करें। उन्होंने कहा कि हैंड्स फ्री और हेडफोन वगैरह का इस्तेमाल लाउड स्पीकर के मुकाबले में समाज के लिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि लाउड स्पीकर से सुनने के दौरान तवज्जो किसी और जानिब मबजूल हो सकती है, जबकि हैंड्स फ्री माइक्रोफोन से सारी तवज्जो एक ही जानिब रहती है और समाज पर मुसलसल प्रेशर पड़ता है और वक्फा नहीं आता।
सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद, हेडफोन का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। इसी तरह हम मोबाइल फोन में हेडफोन यूज करते हैं, तो अब इसी तरह बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हेडफोन यूज करने की जरूरत पड़ती है, तो उनको भी देखना है। तो वो मेरा मशवरा ये है कि ENT स्पेशलिस्ट होते हैं, कोई ऐसा अगर आपसे रबते में कोई ऐसा शख्स है, तो आप उनसे अपनी किसी भी काम के ताल्लुक से, स्पेशली जो आज अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है कान का जो प्रॉब्लम हो जाना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई कम सुनता है, या फिर आहिस्ता 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 उसकी कुव्वत समाअत कम होते होते ख़त्म हो जाती है। तो अल्लाह ताला आपकी मेरी इन तमाम तर जो नेमतें हैं, ईमान भी बहुत बड़ी नेमत है, इसके अलावा आज़ा की सलामती बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक हमें जवाल नेमत से बचाए और अपनी नेमतों में और बरकतें और इजाफा अल्लाह पाक अता फरमाए, और हम उसकी अता करदा नेमतों को उसकी रजा के मुताबिक इस्तेमाल करें। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं तो फ्लाइट देखता हूँ जब मेरा सफ़र होता है, आप यकीन माने 7-7 घंटे की, 8-8 घंटे की फ्लाइट में आदमी कान पर हेडफोन लगा कर सो जाता है, उसको नींद आ जाती है, मगर उसका स्क्रीन चल रही होती है, स्क्रीन पे जो भी इसके आ रहा हो, स्क्रीन चल रही होती है, हेडफोन कान पे लगा हुआ है, ये गया और ये 7-7 घंटे, 6-6 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे तक इसके कान पर हेडफोन लगा हुआ होता है। मैं आई थिंक कि ये मेडिकली ये रिकमेंडेड नहीं हुई है, मतलब मेडिकली शायद इसको मना किया जाएगा। तो डॉक्टर जीरक, अगरचे ये इस इनकी फील्ड थोड़ी चेंज है, लेकिन एज ए मेडिकल एक्सपर्ट के भी डॉक्टर एक अपनी व्यू दे सकता है। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, मैं सोच रहा था अभी बात के दौरान कि ये जो नॉइजिंग नॉइस पॉल्यूशन है और कान का जो प्रॉब्लम है, और अगर खुदा ना खास्ता ये कोई बार-बार कोई ऐसा प्रॉब्लम बढ़ जाए या बहुत ज्यादा हेडफोन इस्तेमाल करें, तो मुझे ऐसा फील होता है कि इससे आपकी जो मेंटली जो अप्रोच है इसको भी इफेक्ट करती है वो चीज, और आई थिंक ये शायद स्ट्रेस को भी इस्टेब्लिश करती होगी और बहुत सारे इस तरह के इश्यूज पैदा करती होगी ये कान का प्रॉब्लम। इस पर कुछ अगर आप शॉर्ट अपनी कोई राय दे दें प्लीज।
जी बड़ा अच्छा टॉपिक है और बहुत सारे लोगों की इसकी तरफ तवज्जो नहीं होती और नॉइज पोल्यूशन चाहे वो सड़कों पर हो या घर में काम करने की वजह से या ऑफिसेज वगैरह में या जहाँ कोई भी हमारा यानी कि जिंदगी गुजारने का तरीका है, तो इससे लॉन्ग टर्म जो है ना ये समाज पर बड़ा असर पड़ता है और हमारे कान के अंदर अंदरूनी कान के अंदर जो आवाज सुनने के बड़े बारीक रेशे होते हैं तो वो मुतासिर होते हैं और आगे चलकर जब आप 50 प्लस में जाते हैं तो फिर एक प्रॉब्लम है टीनिटस, जो बैकग्राउंड नॉइज कान में आती है तो उसका एक जो है बुनियादी रीजन होता है कि आपको नॉइज एक्सपोजर हाई लेवल पर हुआ होता है और बिलखसूस आगे चलकर भी इस वजह से जो है वो आपको स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। और दूसरा ये कि देखिए हम आजकल के दौर में हर कोई ये चाहता है कि मैं पुरसकून माहौल में काम करूं और जब माहौल पुरसकून होता है तो आपका मूड भी जो है वो अच्छा रहता है, लेकिन अब कानों में भी जब आप एक जरूरत से ज्यादा भले वो आपकी जॉब से रिलेटेड है या हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी हमारी जो हवा से खमसा है सुनने की कुवत देखने की सूंघने की, जब आपको इसको एक जरूरत से ज्यादा और ज्यादा देर के लिए इस्तेमाल करेंगे ना तो वो फिर आपकी जो है वो डिसेंसिटाइजेशन होती है, उससे जो है वो आपको वाकई स्ट्रेस फील होता है, शोर शराबा हो, बच्चे की भी जो शोर है वो भी एक हद तक ही हमें अच्छा लगता है। तो डेफिनेटली आपने ये अच्छी तवज्जो दिलाई कि मेडिकल के साथ साथ इमोशनल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ते हैं और आपके यकीनन मूड पर असर पड़ता है, मूड जब जो है वो ऊपर नीचे होता है तो फिर बहुत कुछ जो है वो मुतासिर हो जाता है।
एक वर्ड है एंगर मैनेजमेंट, यानी कि गुस्से के ताल्लुक से जज्बातियत आदमी उसके अंदर पैदा हो जाती है और वो फैसले नहीं कर पाता और गलत डिसीजन ले लेता है, खुद को दूसरों को नुकसान पहुंचा देता है और इस तरह की चीजें घर को भी बर्बाद करती हैं, आपकी दुनिया और आखरत के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। अच्छा, इसमें कत्ल और गारतगिरी भी आ जाती है और इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं जो जमा हो जाते हैं और ये एक हमारा समझे कि एक सोसाइटी कदर इवल ऑफ सोसाइटी, इसको आप इवल ऑफ सोसाइटी के तौर पर भी दे सकते हैं, बिल्कुल हमारे माशरे का एक नासूर बना हुआ है ये सारा निज़ाम और इस तरह मतलब कि कई लोग इसमें मुब्तला हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपने आप को भी, अपने साथ रहने वालों को भी और अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी ये लोग खराब करने में कोई मतलब के इनको समझ ही नहीं पड़ती शायद कि हमने क्या खराबी कर दी और समटाइम ये होता है कि खराबी करते करते ये खुद ही मतलब के कुछ आगे पीछे ही हो जाते हैं। इस तरह की चंद न्यूज हैं एक साथ, उसको वो वन बाय वन हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, वो आप इसको देखें, उसको देखने के बाद अब इंशाल्लाह ताला इस पर थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब ये जो चंद एक हमारे पास न्यूज हैं जिसमें आपको ये हम एंगर मैनेजमेंट के तौर पर भी लेंगे और ये जज्बातियत के तौर पर भी लेंगे, नादानी के तौर पर भी लेंगे, इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं इसको भी अगर आप देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे घर पर हमारी सोसाइटी पर अगर इसको हमने पॉजिटिव लिया और अमल किया और मतलब चेंजेस लाए बेहतर तो शायद फर्क पड़ जाए।
मोबाइल पर गेम खेलने की इजाजत ना देने पर 12 साल का लड़का दोस्तों के हाथों कत्ल। 12 साल का लड़के ने दोस्तों को अपने मोबाइल पर गेम खेलने की इजाजत देने से इनकार किया, दोस्तों ने पत्थर के वार करके 12 साल का दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस का कहना है कि मकतूल ने इनकार कर दिया था कि वो अब अपने मोबाइल पर किसी को गेम खेलने नहीं देगा। पुलिस ने बताया कि दोस्त की जानिब से इनकार का सुनकर साथी लड़के तेज में आ गए जिस पर लड़ाई हुई और उन्होंने अपने दोस्त को पहले घसीट कर तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर पत्थर के पैर दर पे वार करके मार डाला। नशे करने से क्यों रोका, नशेई ने अपने भाई को कत्ल कर दिया।
हैदराबाद में नशे की लत में मुब्तला भाई ने अपने सगे भाई को पैर दर पे चाकू के वार करके जख्मी कर दिया जिसको मोहल्लेदारों ने अस्पताल पहुँचाया जहाँ वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जान बहक हो गया।
मेडिकल कॉलेज की तालिबा ने पढ़ाई के दबाव से तंग आकर पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि लड़की निजी कॉलेज में डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर की तालिबा थी। मेडिकल कॉलेज की तालिबा की मुबैना खुदकुशी के मामले पर डीएसपी ने बताया कि वालिदैन के मुताबिक बच्ची अक्सर कहती थी कि तालीम सख्त है वो नहीं कर पाएगी, जिस पर वालिदैन उसको कहते थे कि आपने हमारे लिए पढ़ना है। डीएसपी के मुताबिक बच्ची के गले पर फंदे के निशान वाजे दिखाई दिए हैं। शोहर ने घरेलू नाचाकी पर बीवी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी।
मुजफ्फराबाद के इलाके में शोहर ने घर में नाचाकी के बाइस अपनी बीवी को आग लगा दी।
खिचड़ी में नमक ज्यादा होने पर शोहर ने बीवी का गला दबाकर मार डाला। इंडियन रियासत महाराष्ट्र में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां 46 साल शोहर ने अपनी 40 साल बीवी को सिर्फ खाने में नमक ज्यादा होने पर गला दबाकर कत्ल कर दिया। चावलों में नमक तेज होने के बाद शोहर आपे से बाहर हो गया और अपनी अहलिया को गला दबाकर मार डाला।
सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी डॉक्टर जीरक, अब आपसे इस मामले में मुझे कुछ तफसील ये लेनी है, कुछ क्वेश्चंस जहन में आ रहे हैं। नंबर एक, हमने अभी एक खबर ये देखी कि मोबाइल फोन किसी लड़के के पास होगा, उसमें गेम, तो उसने मना कर दिया कि मैं अपना मोबाइल फोन नहीं देता। लड़कों को गुस्सा गया और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी और मारते मारते जो कुछ हुआ वो भी हमने सुना कि लड़का ही दुनिया से चला गया। अच्छा, अब नशा करने से क्यों रोका? अब नशा करने से डेफिनेटली उसको खुशी खुशी को घर वाले या कोई भी आकर नशा देंगे तो नहीं, ये ले लीजिए, आपको हाजत बहुत हो रही है, आप ये पीजिए, आप जब पीते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, डेफिनेटली ऐसा तो नहीं होगा। उसको रोका ही जाएगा कि भाई नशा नहीं करो। इसी तरह अब ये मेडिकल कॉलेज के ताल्लुक से मैं चाहूँगा कि इसको भी आप जरा अगर इस तरह लें कि हमारे यहाँ ये मतलब कि स्ट्रेस, इसका कोई नाम तो डेफिनेटली होता होगा कि हमारे यहाँ ये एजुकेशन के नाम पर स्ट्रेस बढ़ गया है स्टूडेंट के लिए कि भाई आपने फर्स्ट आना है, आपने यही करना है। आप उसकी, फॉर एग्जांपल उसकी इंजीनियरिंग में दिलचस्पी है, मैं उसको मेडिकल पढ़ाएंगे, उसके अकाउंटिंग में दिलचस्पी है तो उसको कोई और चीज़ कराएंगे, उसको मतलब कि ये चीज़ करनी ही नहीं है, वो चाहता है कि मैं कुछ और फील्ड लूँ, मैं हुनर सीखूँ, मैं कुछ फन सीखूँ, इवन के वो चाहता ही नहीं कि मैं इस लाइन की तरफ जाऊँ, मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ, मैं हिफ्ज करना चाहता हूँ, मैं आलिम बनना चाहता हूँ और इसको मैं बतौर एक उसके लिए ले लूँगा मैं जो जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत और हाजत है। लेकिन हमारे ये है, हमारे यहाँ भी ये, आपके यहाँ भी आई थिंक होगा और दुनिया के कई मुल्कों में, इंडिया की रिपोर्ट काफ़ी इसमें हमें मिलती है कि वो पेरेंट्स जो हैं और जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो इतना मतलब कि प्रेशर डेवलप कर देते हैं, इतना प्रेशर दे देते हैं कि लड़का या लड़की वो ना करने की सूरत में अब उसके पास घर जाने की गुंजाइश नहीं होती, उसको इंस्टीट्यूशन में भी बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, उसको घर में भी बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, उसको सोसाइटी बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, वो जहाँ जाएगा बस कुछ नहीं हुआ, तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, हमें तो पहले पता था। अब ऐसा शख्स उसके पास फिर खुदकुशी का एक रास्ता उसको नजर आता है जो का गलत है, कंप्लीटली रॉन्ग, लेकिन उसको इस रास्ते की तरफ धकेलने वाला जो हमारा माशरा है उसने ये एटीट्यूड जो क्यों इसने इख्तियार किया। एक तो मैं चाहूंगा कि इसकी भी वजाहत कीजिएगा कि इस तरह ये जो खुदकुशी कर लेते हैं तो क्या ऐसी चीज हो जाती है कि आदमी मतलब के इतना आपे से बाहर हो जाता है। अब खिचड़ी में नमक ज्यादा हो गया तो भाई नमक खिचड़ी में, तो नमक खिचड़ी में ज्यादा होगा ना, नमक को कस्टर्ड में थोड़ी ज्यादा होगा, कि नमक के कस्टर्ड में ज्यादा हो जाएगा आपको मतलब के वो मतलब के प्रोटीन बनाकर मीठी खिलाएंगे कि उसमें नमक ज्यादा हो जाएगा, तो नमक तो ज्यादा खिचड़ी में ही होना है, नमक तो ज्यादा सालन में ही होना है, कोई स्वीट डिश में कभी नमक ज्यादा होता है वो मीठा ज्यादा हो जाएगा, स्वीट ज्यादा हो जाएगी, तो इसी तरह खिचड़ी में कभी चीनी ज्यादा नहीं हो सकती। तो अब ये मतलब ये छोटी छोटी बातों पर तो ये क्या हो जाता है मेंटली तौर पर आदमी को कि वो मार देता है, कत्ल कर देता है, खुद को मार देता है और मतलब जद्दोकोप करता है, ये उठाता है, वो उठाता है, ये तोड़ता है, वो फोड़ता है, यानी उसकी कंडीशन में अगर उसकी उस वो जो पोजिशन होती है उसको जो करा कर उसकी मूवी भी बना दी जाए और वो जिंदा बच जाए और उसको दिखा दिया तो वो आई थिंक वो मतलब फर्स्ट टाइम तो कह देगा कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा हम शक्ल होगा, मैं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं पागल वागल थोड़ी हूँ। तो ये सब क्या हो जाता है आदमी को मेंटली तौर पर कि वो इतने बड़े बड़े अटेम्प्ट कर गुजरता है अल्लाह की पनाह। जी डॉक्टर जीरक
जी, गुस्से के हवाले से सबसे पहले तो एक जो बुनियादी नफ्सियात का उसूल है कि गुस्सा क्यों आता है, ये तो एक फितरी अमल भी है, तो उसमें जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम में से हर किसी की ना कुछ जरूरियात होती हैं, जैसे कुछ फिजिकल नीड्स हो गई, खाना पीना सोना, टेम्परेचर के हवाले से कि हमारा जो है वो गर्मी सर्दी ना लगे, इसी तरह फिर कुछ हमारी सोशल नीड्स होती हैं कि हमारे कोई चाहने वाले हों, हमारे प्यार मोहब्बत करने वाले हों, देखभाल करने वाले हों, इसी तरह फिर कुछ दीगर जो है वो हमारी इसी में जरूरियात आ जाती हैं। तो जब हमारी जरूरियात जिनको हम नीड्स का नाम देते हैं, जब वो नीड्स पूरी नहीं होती तो आपको जो है वो इमोशंस क्रिएट होती हैं आपके माइंड में, और एंगर जो है ये एक इमोशन है कि जब आपकी नीड्स पूरी नहीं होंगी तो आपको गुस्सा आएगा, जब आपकी नीड्स पूरी होंगी तो आप खुश होंगे। तो कोई भी नीड हमारी पूरी नहीं होती है, भूख लगी है तो खाने का टाइम है, खाना मैसर नहीं तो गुस्सा आएगा, प्यास लगी है तो पानी मैसर नहीं है तो गुस्सा आएगा, नींद आई है सोने का मतलब कोई सामान मैसर नहीं है इस वक्त आप सो नहीं सकते तो गुस्सा आएगा, इसी तरह किसी ने आपको कुछ जुमले बोल दिए जिसके सब जिसको आपने समझ लिया कि ये इसने मेरी जो है वो बेइज्जती कर दी है तो आपको गुस्सा आएगा। आप चाहते हैं कि मैं ये काम इस वक्त करूं और वो काम किसी तरह से हो नहीं पाता तो अब आपको गुस्सा आएगा। ये एक फितरी अमल है, यहाँ तक हर किसी के साथ होता है। एक छोटा सा बच्चा है चंद महीने का, अगर उसको खिलौना चाहिए नहीं मिल रहा तो वो शोर करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, उसको गुस्सा आएगा। इसी तरह आप 100 साल का बूढ़ा ले ले, उसको कोई चीज नहीं मिलती, उनकी कोई हाजत होती है वो पूरी उसी वक्त नहीं होती तो गुस्सा आएगा। अब होता ये है कि अब जब बचपन से होते हैं तो आपके वालिदैन आपकी तरबियत करते हैं कि जो है वो किस तरह जो है वो गुस्से को काबू में करना है, किन चीजों पर गुस्सा करना है, किन पर नहीं करना, और गुस्सा जब आए तो उसको आपने कैसे मैनेज करना है। और जो जो उम्र के हिसाब से आप चलते हैं तो बचपन में आपके वालिदैन तरबियत करते हैं कि बेटा अगर आपको भूख लगी है तो आप बताएं, अल्फाज के जरिए इसका इजहार करें कि अम्मी जान मुझे भूख लगी है या अम्मी जान मुझे ये खाना चाहिए, तो आप अपनी जो आपकी जो नीड्स हैं उनको उनका इजहार करें कि मुझे ये चाहिए, फिर वालिदैन उनमें से कुछ नीड्स को पूरा करेंगे और कुछ को नहीं पूरा करेंगे। और ये भी एक तरबियत का बहुत बड़ा हिस्सा है कि जब आपकी जरूरियात पूरी नहीं होती तो ऐसी सूरत में आपने जो है वो अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, उसका जो है वो इजहार नहीं करना। तो शुरू में क्या होता है कि जब गुस्सा आता है तो अचानक फौरन कोई उठा के चाकू को थोड़ी मार देता है, पहले आपकी लड़ाई होती है, हो सकता है आप थप्पड़ मारें तो आपका गुस्सा कम हो जाए। अच्छा फिर क्या होता है कि जब आपने इस तरह किया, फिजिकल फाइट हुई, तो गुस्सा भी ना एक नशे की तरह है कि जिस तरह आप किसी ड्रग का नशा करते हैं ना, तो अब ये पहली बार थोड़ी मिकदार में आपका नशा पूरा हो गया, अब आहिस्ता आहिस्ता वो नशे की मिकदार बढ़ती चली जाएगी। तो अगर इसी तरह आपने गुस्से को काबू ना किया तो शुरू में हो सकता है एक थप्पड़ मारने पर जो है आपका गुस्सा ठंडा हो जाए, लेकिन अब क्या होगा कि आगे चलकर आप जो है वो पंच करेंगे। अच्छा पंच के बाद भी फिर एक नहीं है 10 पंच करेंगे, और यूं आहिस्ता आहिस्ता जो है एक लंबा अरसा होता है कि जिसमें छोटी छोटी चीजों पर आप फिर जो है वो गुस्सा करते जाते हैं और फिर ये काम बढ़ता जाता है। अच्छा फिर क्या होता है कि बाज़ दफा काम ज्यादा बिगड़े तो गुस्सा आता है, फिर क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी चीज भी मिजाज के खिलाफ होती जाए तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो ये कंट्रोल ना करने की वजह से, और फिर एक न्यूज में तो हमें यही सुनने को मिलता है कि देखे जो है वो नमक कम हुआ तो शोर को गुस्सा आ गया। अच्छा इसके पीछे देखा जाए तो हो सकता है कि सारे दिन पता नहीं क्या होता रहा होगा मियां बीवी के दरमियान आपस में, तो बाज दफा ये भी अनासिर होते हैं। तो ये एक गुस्से के हवाले से बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि इसकी तरबियत हो बच्चों की। और सबसे बड़ी गलती जो वालिदैन करते हैं कि बच्चे को गुस्सा आया है तो अब आप उसकी तरबियत कैसे कर रहे हैं, आप भी गुस्से में आकर कर रहे हैं, आप थप्पड़ मार रहे हैं। और अक्सर जो यानी कि जवान एडल्ट्स जब इस तरह के कोई भी काम करते हैं तो उनकी जब हिस्ट्री एक्सप्लोर की जाती है तो बचपन में कहीं ना कहीं उनके साथ अब्यूज हुआ होता है, या उनको प्यार मोहब्बत नहीं मिला होता, या उनकी इसी तरह की इमोशनल नीड्स जो है वो वालिदैन ने पूरी नहीं की होती। अमूमन जो है वो हम बच्चों की कपड़े, खाना पीना इस हवाले से जो है वो बड़ी केयर करते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनकी इमोशनल नीड्स की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती। बच्चे की छोटी छोटी चीज पर जो है उसकी यानी कि हितक कर देना, उसकी डिसरेस्पेक्ट कर देना, उसको बुरा भला कह देना, डांट देना, ये बच्चे पर ज्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। तो जब बच्चों की इस तरह की इमोशनल नीड्स, फिजिकल नीड्स पूरी नहीं होती या उनके साथ किसी न किसी तरह का बचपन में अब्यूज हुआ होता है, जिनसी तशद्दुद वगैरह या और इस तरह के मामलात, अब जब वो बड़े होते हैं और दे बिकम पावरफुल, देखिए गुस्से का इजहार भी जो है वो अपने से कम पावर वाले पर होता है, ठीक है। तो अब जब इनके पास पावर आती है, जिस्मानी ताकत आती है, फिर इसी तरह आगे चलकर इनके पास चाकू छुरियां या पिस्तौल या और चीजें आती हैं, तो अब फिर जो है इनको कोई रोक नहीं सकता। और क्योंकि तरबियत हुई नहीं होती, तो अब या तो छोटे छोटे मामलात पर ये बहुत बड़ा स्टेप ले लेंगे, या फिर बाज दफा जान बूझ कर जो है फिर इनकी आदत बन जाती है, तो ये फिर झगड़ों को तलाश करते हैं, कहां मुझे मौका मिले तो मैं किसी के साथ जो है वो करूं। तो ये एक थोड़ा सा यानी कि इसमें नफ्सियाती तजी है कि भाई गुस्सा क्यों आता है और फिर इसका इलाज न किया जाए तो ये बात बढ़ते बढ़ते जो है वो कहां तक चली जाती है।
ये बात जो भी हमें डॉक्टर जीरक साहब ने बताई कि अब ये मुझे भी इसका, मैं जब ये पढ़ रहा था तो मुझे लगा खिचड़ी में नमक ज्यादा, तो ये ऐसा फेल नहीं है कि आदमी उठकर अपनी बीवी को इतना मारेगा कि वो मरी जाएगी। सब पीछे से कुछ चीज आ रही होती है। मैं आपको शायद याद होगा कुछ अरसे पहले मैंने कोई एग्जांपल दी थी कि जो मोटी रस्सी होती है उस रस्सी के गिर्द बल होते हैं ना, रस्सी के गिर्द बल होते हैं। हमको रस्सी टूट, हम कहते हैं यार रस्सी टूट गई, ये रस्सी टूट नहीं सकती, है ना। ये इतने कच्चे धागे नहीं होते कि मतलब ये यूं झटका लगा और टूट टूट गया। ये मतलब कि बाकायदा एक रिश्ते बने हुए होते हैं ना। ये मियाँ बीवी का रिश्ता भी यूं नहीं होता कि ये ठा करके खत्म, नमक कम है तो नमक ज्यादा है तो ये मतलब यूं लड़ाई झगड़ा हो गया, ये उमूमी तौर पर ऐसा होता नहीं है। कुछ चीजें चल रही होती हैं, यूं समझे कि झगड़े की आंच पर ये रिश्ते की रस्सी लगी हुई होती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप लाइटर जलाएं, इसकी एक लो जलती है आग की, उसके ऊपर आप रस्सी रखते हैं, मोटी सी रस्सी रखें आप जिसके अंदर बल लगे हुए हैं, तो वो हल्की हल्की जो इसकी जो आंच है, आग है, ये एक एक बल को एक एक धागे इसको जलाती रहेगी, जलाती रहेगी, जलाती रहेगी, जलाती रहेगी, जलाती रहेगी। फिर एक वक्त आएगा ये इतनी जलकर इसकी इसके बल इतने खत्म हो गए कि आपको एक झटका, आप आग हटा दें, सिर्फ झटका लगाएं, रस्सी टूट जाएगी। हमारे ये जो डिस्प्यूट्स हमारे जो यहाँ हैं, ये ज्यादातर इसके पीछे ये सारी स्टोरीज होती हैं कि जैसे कि घर में जैसे आदमी आता है, शौहर आता है, तो वो सामने से कोई ऐसी डिस्कशंस हो जाती हैं, तनकीद की जाती है, गुस्सा दिलाने वाले काम किए जाते हैं, या शौहर बदतमीजी करता है, बद अखलाकी करता है, डांटता है, झाड़ता है, वो ताने देता है, बेइज्जती कर रहा होता है अपनी बीवी की, तो ये सारी चीजें जो है ना ये जमा हो रही होती हैं, और ये एक एक बात जो है ना ये एक एक बल को जला रही होती है। अच्छा, अब चूंकि कुछ सुलह करके इस रस्सी को दोबारा कोई दोबारा इसको सेट करने वाला होता नहीं है हमारे जनरली तौर पर, तो ये टूट रही होती है। फिर बस अब कुछ नहीं, घंटी बजाई, दरवाजा खुला नहीं टाइम पर, मारपीट शुरू, या तो तलाक दे दी, या फिर कुछ और अल्लाह ना करे बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। तो इन सब के पीछे एक स्टोरी है। अगर आप मुझे देखो सुन रहे हैं और आपके घर में इसी तरह का कोई खुदा ना खास्ता माहौल बना हुआ है, तो मेरी दरख्वास्त ये है कि इसे अभी इसी वक्त एक्सक्यूज, माजरत, सॉरी, माफी, आइंदा हमें नहीं करना चाहिए, हम आइंदा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, आइंदा बोलते हुए ख्याल रखेंगे, ये एक दूसरे को इस तरह डांटते झाड़ने से बचेंगे, ये वो लोशन है जिससे आप मतलब ये वो मतलब कि यूं समझिए कि ये वो चिप जो जिससे चीज़ें चिपकती हैं और चीज़ें दुरुस्त होती हैं, ये वो चीज़ें जिससे आपके दरमियान ये जो टूट फूट हुई है ना ये जुड़ना शुरू हो जाएगी। ये जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं है कि आपके 10 साल की लड़ाई है तो वो 10 मिनट में खत्म नहीं हो सकती, अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता। आपका पैशन, आपने अगर अपने बच्चों के ऊपर इसी तरह की कोई एजुकेशन के तौर पर प्रेशर, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं मुझे पता है इसका इतना प्रेशर डेवलप किया हुआ होता है कि अस्तगफिरुल्लाह समझ में नहीं आता कि माँ बाप को क्या हो गया है, पढ़ाई के नाम पर अपने बच्चे को दांव पे लगा दिया है। इससे भी वो बच्चा, क्योंकि उसको मतलब बेइज्जती का खौफ है तो खुदकुशी कर लेता है। ताहम जो खुदकुशी कर रहे हैं, अल्लाह ना करे, जिनका खुदकुशी का भी अल्लाह ना करे कोई सरा गए, तो अगर वो सुन रहे हैं तो मैं आपको ये बात बताता चलूं, खुदकुशी के ताल्लुक से जरा तवज्जो से सुनिएगा जो मैं आपको इस वक्त कहने जा रहा हूँ कि پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کی وہ مسلسل جہنم میں گرتا رہے گا، جس نے زہر کھا کر خودکشی کی قیامت کے دن وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں اسے ہمیشہ کھاتا رہے گا، اور جس نے چھری کے ذریعے خود کو قتل کیا قیامت کے دن وہ چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور دوزخ کی آگ میں ہمیشہ وہ چھری اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا۔ تو یہ حدیث پاک جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس حدیث کو بھی اگر آپ سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ آ جائے گا ذہن میں کہ یہ اس کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی، قرآن میں بھی اس کو منع کیا گیا، حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کریں، توکل کریں، اللہ پاک ہمارے حالات کو بدلنے والا ہے۔ مگر یہ تو میں ان کو عرض کر رہا ہوں جو کسی نہ کسی وجہ سے ان کو ایسے ذہن میں آ جاتا ہے، روزگار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، جناب وہ قرضہ چڑھ گیا تو بے عزتی کا خوف ہے، فلاں فلاں گھر کے حالات، واقعی عادیات، جان چھوڑ دو، مرنا کبھی حل نہیں ہے۔ یہاں تو ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ مہینوں میں یا سال میں یا دو سال میں وہ حالات تبدیل ہو جائیں، اور ہو جاتے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ اس طرح خودکشی کر کے مر گئے اور یہ عذاب نے آ لیا تو پھر تو اس کا اینڈنگ کہاں تک دیکھتے ہیں آپ؟ وہ تکلیف کے بارے میں ذرا سوچئے۔ یہاں تو 100-200-500 ارد گرد لوگ ہیں، تو اللہ نہ کرے اگر عذاب ہو گیا تو کیا حال ہوگا، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ لہٰذا ایسی کوئی چیز اپنے ذہن میں نہ لائیں۔ یہ تو میں نے ان سے بات کی جن کا خدا نہ خواستہ اس طرح کی طرف کوئی ذہن جاتا ہو، تو وہ خودکشی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ امیر سنت کا رسالہ ہے خودکشی کا علاج، اس کو لیں، اور ایک امیر سنت کا رسالہ ہے غصے کا علاج، اس کو بھی لے لیں۔ غصے کے علاج میں ٹوٹل اینگر مینجمنٹ آپ کو وہاں مل جائے گی، خودکشی کے علاج میں جو سوسائڈ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں جو آپ کو سوسائڈ سے روکتی ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو وہاں پر مل جائیں گی۔ یہ تو میں نے ان سے بات، اب رہے وہ لوگ کہ جو ایسے حالات پیدا کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں، آپ سوچے صحیح کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے آپ جیل میں چلے جائیں، اللہ نہ کرے آپ کا گھر اجڑ جائے، اللہ نہ کرے آپ کے بچے آپ کے سامنے مطلب کہ خودکشی کر لیں، اللہ نہ کرے کچھ کا کچھ ہو جائے، اللہ نہ کرے آپ قاتل قرار مطلب دے دیے جائیں۔ تو کبھی سوچا نہیں آپ نے کہ یار یہ جو مطلب مجھے بلا وجہ کا جو یہ غصہ آ جاتا ہے اور میں اس کو اس طرح مطلب نافذ کرنے میں لگ جاتا ہوں، آپے سے باہر ہو جاتا۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے شریانی پھٹ جائے، برین ہیمریج ہو جائے، فالج کا اٹیک ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، اتنا جذباتی ہو جاتے، اتنی چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، کول ڈاؤن، نارمل ہو جائیں۔ لوگوں سے بہت زیادہ توقع ہی نہ رکھیں نا کہ آپ کو اتنا غصہ آ جائے، کیوں اتنی توقع باندھ کر رکھتے ہیں کہ جناب یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا؟ تو اپنی توقعات کم کریں، اپنی جو آپ نے جو امیدیں باندھ کر رکھی ہیں اس کو کم کریں، نمازیں پڑھیں، عبادت کریں، قرآن پڑھیں، باوضو رہیں، انشاءاللہ تعالی بہت ساری چیزیں آپ کی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ابھی تک جو کچھ ہم نے ڈسکس کیا ہے اللہ کرے کہ ہمیں اس پر اس کو سمجھنے میں ہمیں مثبت سوچ مل جائے، ہم اس کو سمجھے اور اس پر عمل کریں۔ تو میں تمام تر لوگوں فیملی سے سب عاشقان رسول عرض کرتا ہوں، پلیز اپنی تمام تر ایکٹیویٹیز کو اور اپنے ایٹیٹیوڈ کو اور اپنے رویوں کو ریوزٹ کریں، ایک بار غور کریں کہ ایسا نہ ہو۔ مطلب آدمی چاہتا ہے کہ جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہو جائے، یار آپ کو یہ بولنا چاہیے تھا نا بھائی، آپ جیسا چاہتے تھے وہ نہیں بولا، بات تو وہی تھی نا جو آپ چاہتے تھے کہ ایسی بات ہو جانی چاہیے، ہو گئی۔ اب ہماری پسند کا جملہ، ہماری پسند کی ہر چیز، ہمارے ایسا نہیں ہوتا، جو یہ پوسیبل نہیں ہے۔ ہر ایک ہی جدا جدا انداز ہوتا ہے، ایک ہی ریسیپی پر کھانا بنتا ہے، وہ کھانا بناتا ہے تو ٹیسٹی بنتا ہے، وہ کھانا کم ٹیسٹی بنتا ہے۔ تو یہ ایک لذت کی بات ہوتی ہے، ہر ایک ہاتھ کی اپنی لذت الگ ہوتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک ہیومن سائیکی ہے، لوگوں کی ایک نفسیات ہے، انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے۔ اور بہتر تو یہ کہ رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے اپنے صحابہ کرام غلام اس معاشرے کے لوگوں کو آپ نے مطلب اپنے خوبصورت انداز سے آپ نے ان کی تربیت فرمائی، ان کے ساتھ رہے، اور تو یہ اس پر بھی اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ زندگی ایک بہتر انداز سے گزرنے کی پوزیشن میں آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اور پرابلم جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا، وہ واقعی مجھے بھی ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ تھوڑی تھوڑی چیزوں میں میڈیسن کھا لیتے ہیں، یار یہ دے دو، یار یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو۔ تو یہ سیلف میڈیسن جو ہے یہ بہت خطرناک ہے، جی ہاں، اور اس وقت دنیا میں اس کو ایک باقاعدہ ایشو بنایا گیا، یہ باقاعدہ ایک پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے۔ ये घर में भी यही होता है कि घर में बेटा ये ये दवाई खा लो, अच्छा मतलब गले गला प्रॉब्लम कर रहा है, आप फला एंटीबायोटिक ले लें, अरे भाई डॉक्टर से पूछ तो लें, अरे पूछना क्या, इसके गले में खराबी थी मेरे भाई, तो आप आवाज निकालो, आपकी आवाज अलग उसकी आवाज अलग, हो सकता है गले का प्रॉब्लम भी अलग अलग हो। तो ये एक हमारे यहाँ बड़ा इशू बन चुका है, घर के अंदर हर कोई डॉक्टर बन के अपनी वो डॉक्टरी कर रहा होता है, तो गैर तबीब का इलाज में हाथ डालना इसकी शरीयत ने इजाजत नहीं दी है, ये तो आप अपने जहन में बिठा लें। तहम ये एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट पर डॉक्टर कामरान हमारे हैं, उन्होंने भी अपनी एक एक्सपर्ट व्यू दिया है, आइए देखते हैं।
पाकिस्तानियों ने 120 अरब रुपयों की एंटीबायोटिक इस्तेमाल की, तिबी माहरीन के मुताबिक 70% अद्वियात बिला वजह इस्तेमाल की गईं। ये रकम मजमूई सेहत पर खर्च की जाने वाली मालियत की 10% है।
अद्वियात के हवाले से आज हम थोड़ी सी बात करेंगे, जिसमें सेल्फ मेडिकेशन खास तौर पे इसके ऊपर हमने बात करनी है, कि जो सेल्फ मेडिकेशन होती है वो इंसानी सेहत के ऊपर काफी नुकसानदेह साबित हो जाती है बाज़ अवक़ात। तो जब आप सेल्फ मेडिकेशन का मतलब ये होता है कि आप अपनी मर्जी से अद्वियात का इस्तेमाल करें, वो चाहे आप खुद से जाकर परचेज करके इस्तेमाल करें या डॉक्टर ने जो आपको लिख के दिया अद्वियात उसको सही तरीके से इस्तेमाल न करें, जिस तरह हिदायत डॉक्टर आपको दे रहा होता है उसमें भी आपको ये सेल्फ मेडिकेशन का हिसाब किताब बन जाता है कि अपनी मर्जी से आप दवा इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर कोई डॉक्टर ने आपको दवा इस्तेमाल करने के लिए मोस्ट लाइकली एंटीबायोटिक्स के ऊपर खासतौर पर ज्यादा जोर होता है कि एंटीबायोटिक्स अगर जब दी जा रही होती है तो वो एक खास पीरियड के लिए देते हैं, जिसमें 4 दिन 5 दिन हफ्ता 10 दिन 15 दिन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कंडीशन किस किस्म की है, उसके हिसाब से डॉक्टर तजवीज कर रहे होते हैं। लेकिन देखने में ये आता है प्रैक्टिकली कि जब अद्वियात जब उसके मरीज के अलामत सबसाइड होना शुरू हो जाते हैं, खत्म होना शुरू हो जाते हैं या कम होना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी दवाओं की तरफ तवज्जो कम हो जाती है, उसका इस्तेमाल करना भी कम हो जाता है, जो कब जब याद आता है जब खा लेता है, कब याद नहीं आता तो नहीं खाता है, या फिर अगर उसके अलामत बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तो वो दवा भी खत्म कर देता है। अब उसका इफेक्ट क्या पड़ता है बॉडी के ऊपर, जब आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं अगर वो प्रॉपरली डोज में नहीं लेते हैं तो आपकी जिस्म के अंदर उसके खिलाफ मजाहमत पैदा हो जाती है, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप वो दवा यूज करवाते हैं तो वो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंट डेवलप कर जाती है, तो जिसकी वजह से वो दवा आपके ऊपर उस वक्त इफेक्ट नहीं कर रही होती है। तो लामहाला डॉक्टर साहब को किसी दूसरी दवा के ऊपर या किसी और एंटीबायोटिक के ऊपर या हाई एंटीबायोटिक के ऊपर जाना पड़ रहा होता है तो फिर वो दे रहे होते हैं। तो ज्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल यूं भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि दवा आप प्रॉपरली ले नहीं रहे होते हैं और फिर उसकी दवा को एक्सचेंज करके जब डॉक्टर साहब ने दूसरी एंटीबायोटिक दे रहे होते हैं तो वो आपकी बॉडी के ऊपर ज्यादा असर कर रही होती है, क्योंकि पुरानी दवा आपको रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है, इसकी वजह से वो काम नहीं कर रही होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। दूसरा जो मेडिकल स्टोर से लेकर अद्वियात वगैरह इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी जानने वाले को बीमारी होगी, जो मेरे किसी रिश्तेदार को तकलीफ हुई तो उसने ये गोली खाई थी ठीक हो गई थी, ये भी इंतहाई नुकसानदेह साबित होती है। खासकर किसी मोजिम वर्ष के अंदर कोई अगर ये दवा इस्तेमाल करता है, जैसे शुगर की बीमारी है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, इसकी दवा में ये ब्लड प्रेशर ईजी हुआ तो ये एक गोली मैं खा लूंगा ठीक हो जाएगा, तो बाज़ औक़ात ये नुकसानदेह साबित हो जाती है, बे इंतहा नुकसानदेह साबित हो जाती है, तो इससे बचना ही चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन करना अच्छी बात नहीं है, सिर्फ पैसा का ज़िया होता है, उसके अंदर सेहत पे इतना इफेक्टिव असर नहीं होता। बेहतर है किसी मुस्तनद डॉक्टर या तबीब से मशवरा करके ही अपनी ट्रीटमेंट या अद्वियात का इंतखाब किया जाए तो वो ज़्यादा मुनासिब रहता है।
डॉक्टर के मशवरे के बगैर कुछ भी ना लें, कुछ भी ना लें, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एक आध डॉक्टर को अपने साथ ऑनलाइन टेलीफोन पर रख लें, डॉक्टर मिल जाते हैं, अच्छे डॉक्टरों की भी कमी नहीं है, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, फोन पर रिस्पॉन्ड करते हैं, आपको बता देंगे कि आप ये नहीं ये कर लें, ये नहीं ये कर लें, वो डॉक्टर वही ये आपको बता सकेगा जो आपका मुस्तकिल ट्रीटमेंट करता है, वो आपकी फिजिकली और तमाम तर चीज़ों को बहुत क्लोजली समझते हैं डॉक्टर साहब कि आप क्या कर क्या आपकी पोजिशन क्या है, तो मेहरबानी करें। अच्छा, अब प्रॉब्लम यह है कि आपको प्रॉब्लम आए दिन हो जाता है, अब ये आए दिन प्रॉब्लम क्यों हो जाता है, आए दिन गला खराब पे क्यों हो जाता है, आए दिन कान में दर्द पे क्यों हो जाता है, आए दिन सर में दर्द क्यों हो जाता है, आए दिन पेट खराब क्यों हो जाता है, देखिए क्यों को पकड़ने की कोशिश करें, वाई, तो क्या ये आप जब जब आप इसको जब पकड़ेंगे नहीं तो ये होता रहेगा, जब होता रहेगा तो डॉक्टर को फोन करते रहेंगे, डॉक्टर तो आपको दवाई देता रहेगा, तो दवाई के फिर भी साइड इफेक्ट है। ये ऐसा नहीं है कि आपको मेडिसिन डॉक्टर से पूछकर भी ले रहे हैं तो डॉक्टर भी आपको इंशाल्लाह इस बात को इंडोर्स करेंगे कि मेडिसिन के आफ्टर ऑल कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स आते तो हैं और एंटीबायोटिक के तो बहुत साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो मेरी दरख्वास्त आपसे ये है कि अल्लाह आपको और मुझे اپنی رضا کے کاموں کے لیے صحت مند رہنا نصیب فرمائے اور اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. ان غذاؤں سے بچیں, ان چیزوں سے بچیں. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں سگریٹ چھوڑتے ہی نہیں, حالانکہ سگریٹ کی وجہ سے ان کے پرابلمس ہو رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ پان گٹکے سپاری چیزیں چھوڑتے ہی نہیں ہیں, اس وجہ سے پرابلم ہوتے ہیں. کچھ کو کولڈ ڈرنک چلتی ہی نہیں ہے مگر ان کو کولڈ ڈرنک چھوڑنی نہیں ہے. کچھ کو ٹھنڈا پانی تک نہیں چلتا, نہیں چھوڑنا. کچھ کو کھانے میں 10 چیزیں ہیں وہ آئٹم نہیں چلتے, اس کو اس کا گلا پیٹ یا دیگر جو آرگن اور باڈیز ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. نہیں بھائی کیوں ضد کر رہے ہیں, مطلب گردا بولتا میں نہیں لوں گا, آپ بولتے تیرے کو لینا پڑے گا, پھر ڈال پھر دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں. گردا بگڑ جائے گا تو کیا کرو گے پھر آپ, اس طرح پھیپڑا منع کرتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو ان چیزوں کو آپ کیوں مطلب کہ ان چیزوں کو چیلنج نہ کریں. ہاں یہ گردے پھیپڑے ہوئے جو اندر میں یہ چیزیں کو چیلنج نہ کرے. جب جب ہو جو کر لے, میں تو ڈالوں گا اندر میں, میں تو کروں گا یہ, پھر وہ جو کریں گے نا پھر ڈاکٹر کے پاس بھاگنا پڑے گا. اسی طرح میدے کی بھی مانے, میدا منع کرتا ہے کہ میرے کو اندر یہ مت ڈالو, میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا, اور ہم بولے کہ نہیں کرنا پڑے گا, پھر ڈالے تو پھر میدا بولے گا میں نے تو منع کیا تھا. یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی نہ کریں اس طرح چیزیں, ایسی ضد نہ کریں. یہ مطلب آرگن اور باڈیز اور اندر کے جو حصے ہیں یہ پرابلم کر سکتے ہیں. بعض لوگ تو آنکھوں میں ڈراپ تک ڈال دیتے ہیں یار, ڈاکٹر سے پوچھے بغیر. کین یو امیجن, ڈاکٹر سے پوچھے بغیر کان میں ڈراپ ڈال دیا. اتنا بڑا آپ نے آنکھوں کا رسک لے لیا, ڈاکٹر سے پوچھے بغیر آپ نے کان میں ڈراپ ڈال دیے. نہیں مانتے بھائی, کریں گے. ڈاکٹر تو بولتا رہتا ہے, پھر ڈاکٹر اور بھی کچھ کرتا رہتا ہے, پھر جانے ڈاکٹر کے پاس. تو ہم تو یہاں باقاعدہ یہ پروگرام جو پرسنلی طور پر میں آپ کو اپنی انٹینشن بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ اس طرح کرنے ہم خود ڈاکٹر کو آن لائن لیتے ہیں. یہ مطلب ڈاکٹر جو آپ کو ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں, یہ ایڈوائز اگر ان کے پاس جائیں تو یہ کوئی سستی ایڈوائز نہیں ہے. یہ ہم مدنی چینل کے ذریعے ہم ایک فری کام ہے. اور کیا ٹھیک ہے آپ کا چندہ آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, لیکن یہ ساری چیزیں کیوں کر رہے ہیں؟ خدا ناخواستہ اس بچنے کے لیے ہم آپ کو کہ خدا ناخواستہ مبتلا ہو جائیں گے تو بہت پرابلم ہو جائے گا. تو اس کو پلیز آپ ہماری بھی نیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے کہ ہم اپنی ان چیزوں کو بچائیں, ورنہ بہت پرابلم ہو جائے گا. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. اللہ خیر فرمائے, اللہ عافیت نصیب فرمائے, اور ہم سب کے گناہوں کا اللہ معاف فرمائے. جی ایک کال لے لیتے پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے.
محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے نگران شورا آپ کا سلسلہ سبق آموز خبریں بہت پیارا چل رہا ہے. نگران شورا آپ سے میرا یہ سوال ہے, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا حادثہ کوئی پیش ہوا بھی جائے روڈ وغیرہ پر, تو کس انداز میں اور حوصلے سے اب صبر کر کے حادثے کو صبر کرنا چاہیے اور کس انداز میں نکلنا چاہیے, اس بارے میں رہنمائی فرمائے. تاکہ بعض لوگ ایسے دیکھنے لیے ایسا ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ قابو نہیں رکھ پاتے, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ ہمیں اس موقع پر کس انداز میں اپنا حوصلہ کو بلند رکھنا چاہیے, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں.
دیکھیے یہ میں اس کو دو زاویے سے دیکھ رہا ہوں, ایک تو خود اپنا ہی حادثہ ہو گیا یا کسی کا حادثہ ہو گیا اور ہم وہاں پر موجود ہیں. دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے تو ہمیں اپنے اعصاب پر سب سے پہلے کنٹرول رکھنا چاہیے, اور مطلب بالکل اپنے آپ کو ایک کوشش کرے. وہ کانشیس ہی ختم ہو گیا, آدمی بے ہوش ہو گیا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, لیکن جتنا ہو اتنا وہ اپنے آپ کو سنبھال کر رکھے. اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نا, وہ تو بیچارہ سڑک پر پڑا ہوا ہوتا ہے, اس کے پاؤں میں بہت بری چوٹ لگی ہوئی ہوتی ہے, اچھا بعض اوقات کمر میں بڑی عجیب و غریب چوٹ لگی ہوئی ہوتی ہے. اب چونکہ ہمارے یہاں بدقسمتی کے ساتھ, بالکل انفارچونیٹ بدقسمتی کے ساتھ کہوں گا, ہمارے یہاں فرسٹ ایڈ ٹریننگ ہے ہی کوئی نہیں, نہ ہونے کے برابر ہے. بہت کم ایریاز کے اندر آپ کو یہ ملے گا. یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی خدا نہ کہتا ایسا کوئی پیشنٹ آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے, آپ کو اس کو اٹھانا کیسے. ہمارے یہاں تو اس کا پرابلم اتنا بڑا نہیں, جس کو اٹھانے کے بعد جب اس کا پرابلم کر دیں گے, ارے اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھاؤ, ایسا اٹھائیں گے کہ وہ تو چیخ رہا ہے, آپ کو لگے گا وہ درد کی وجہ سے چیخ رہا ہے, وہ آپ کے اٹھانے کی وجہ سے چیخ رہا ہے, ہم کو اٹھانے نہیں آتا. یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے. آپ دیکھیں اسٹریچر لاتے ہیں جو میڈیکل کے لوگ ہوتے ہیں, اور اس کو بڑے ہی مطلب کہ ایک اینگل کے ساتھ اٹھا کر اس کو اسٹریچر پر ڈالتے ہیں. بعض اوقات ہمارے اٹھانے کی وجہ سے اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, اس کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, اس کی وین
इसके मतलब के प्रॉब्लम में आ जाती हैं, हमारी वजह से आ जाता है। कई कई दफा हमारी बेदर्दी से उठाने की वजह से बेचारे की गर्दन की हड्डी प्रॉब्लम में आ जाती है। तो ये एक बाकायदा टॉपिक है जिसको अल्लाह करे कि हमारे सोसाइटी में इसको राइज किया जाए कि फर्स्ट एड कैसे किया जाता है। तो जब हम इस तरह की चीजें करते हैं तो खुदा ना खासा अगर हमारे साथ हो जाए ना, तब बाज औकात हो सकता है कि हमें वो चीजें चूंकि हमने पढ़ी सीखी होती हैं, तो हम उसको हो सकता है कि अपने तौर पर भी हम इसको एडजस्ट कर सके, मुझे अब यू मूव करना है और यू मूव करना है। तो ये मुख्तसर सी चीज ये मेरे जहन में आई थी। मदरी जगह के नाजरीन, हमारे पास कुछ इबरत वाली खबरें भी हैं, मगर इबरत वाली खबरों की तरफ जाने के बजाय मैं आपको काबिल रश्क खबर की तरफ लेके जाता हूँ। मिस्र का ये वाकया है, किस अंदाज पर एक शख्स की रूह निकलती है, आइए देखते हैं।
दौराने सजदा शहरी खाली के हकीकी से जा मिला। मिस्र से एक खबर आई है जहां पर एक शहरी नमाज के दौरान सजदे की हालत में खाली के हकीकी से जा मिला, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। गल्फ न्यूज के मुताबिक ये वाकया मिस्री शहर समूहा में पेश आया, जहां एक स्टोर में शहरी की नमाज के दौरान रूह कब्ज हो गई। सजदे में शहरी के इंतकाल का वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि शहरी ज़कात अदा करते हुए दूसरे सजदे में ही दम तोड़ जाता है।
हा हा हा, किस मुसलमान की ख्वाहिश नहीं होती होगी कि मैं मुझे मौत, काश अल्लाह की इबादत करते हुए, निकी करते हुए, काश सजदे में, वो भी सजदा भी काबे मुशरफा के सामने हो भी तो क्या बात है। मदीने मुनवरा में आका की मस्जिद नबी शरीफ में नमाज पढ़ते पढ़ते, रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ते पढ़ते रूह मेरी निकल जाए तो क्या बात है। लेकिन ये बड़ी काबिल रश मौत थी, और सजदे की हालत में किसी का दुनिया से चले जाना यकीनन इसे हर एक पसंद करेगा, लेकिन ये एक पहलू है जो बड़ा ब्राइट और बड़ा आइडियल पहलू है। लेकिन क्या कीजिए इस खबर का भी कि भाई की शादी में नाचते नाचते भाई मर गया। देखें,
भाई की शादी में डांस करता नौजवान अचानक गिरकर फौत, तकरीब में कोहराम मच गया। मिस्र से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई है, जहां अपने भाई की शादी की खुशी में दीगर मेहमानों के हमरा डांस करते हुए नौजवान को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो गिरकर वफात पा गया। इस अफसोसनाक वाकये के बाद शादी की तकरीब में सफे मातम बिछ गई। कहा जा रहा है कि मरहूम अपने भाई की शादी के मौके पर बहुत खुश था, इसे डांस करते हुए अचानक हार्ट अटैक हुआ और जिंदगी से हाथ धो बैठा।
इत्तेफाक देखेंगे आप, दोनों खबरें मिस्र की हैं। मिस्र की एक खबर ये आई कि एक शख्स सजदे की हालत में इंतकाल कर गया, और मिस्र से खबर यह आई कि भाई की शादी में नाचते नाचते नौजवान का इंतकाल हो गया। जहां में है इबरत के हर सु नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बूने, कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो आबाद थे वो मक्का अबे सुने, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। ये नाचने गाने कूदने वालों, ये आपके लिए बड़ी इबरत थी। एक और इबरत की बात आपको बताऊं, जो आप शादी ब्याह में ये जो आपने जो आजकल जो आपने बहुत ट्रेंड ये बढ़ गया है, एक माँ के साथ क्या हुआ, आइए ये भी सुनिए।
बेटे की बारात में खुशी मनाते हुए माँ चल बसी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नौजवान की बारात घर से दुल्हन लेने निकल रही थी और हर तरफ खुशी का समा था। ढोल की थाप पर दुल्हा की माँ समेत सभी बंगड़े डाल रहे थे कि नाचती गाती माँ अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी। औरत के गिरने पर इन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने इनकी मौत की तस्दीक कर दी।
एक मौत सजदा करते करते, आह मजा आ गया होगा आपको, आपकी तमन्ना होगी क्या यार इसकी जगह मैं होता। दो मौतें नाचते नाचते, आप यकीनन कोई मुसलमान की तमन्ना नहीं होगी यार मुझे यूं मौत आए, यूं मुझको मौत आए तो क्या पूछना मेरा, मैं खाक पर नजर तेरे दीवार की तरफ, काश मदीने पाक में इस तरह मौत आ जाए। नजम की ये खुदा आरजू है यही, आशिक ज़ार की आबरू ही यही, मौत के वक्त सर इनके कदमों में हो, दीद होती रहे दम निकलता रहे, काश। मैं आप नाचने गाने वालों से बात कर रहा हूं, जो शादी में खुशियों के नाम पर किसी भी इस तरह के इवेंट के नाम पर आप नाचते हैं, कभी सोचा है ये नाचते नाचते में मर गया तो क्या होगा, कंसर्ट में मैं जाता हूँ, इतना नाचता हूँ, मैं मर गया तो क्या होगा, स्टेज पे मैं मर गया तो क्या होगा। ऑर्केस्ट्रा वालों से मैं बात कर रहा हूँ, ये ड्रम बजाते हुए, ये पियानो बजाते हुए, ये गिटार बजाते हुए, ये जो कुछ आप करते हैं, ये मतलब मैं इस तरह मर गया तो क्या होगा, ये सब करते करते मेरे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनिए। आप इरशाद फरमाते, आपने कुछ इरशाद फरमा, मुझे आलात मौसीकी को तोड़ने के लिए भेजा गया है। जी हाँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को तोड़ने के लिए भेजा गया है। इस्लाम और दीन की रूह को समझें, कुरान और हदीस की रूह को और इसके इरशादात को समझने की कोशिश करें, बेकार की जिद बहस ना करें। इस्लाम इन चीज़ों की इजाज़त नहीं दे सकता जो हो रहा है। ये जो नाचना गाना वैलेंटाइन डे के नाम पर, तो मंगनी के नाम पर, शादी के नाम पर, तो जनाब कोई और खुशियों के नाम पर, तो इंडिपेंडेंट डे के नाम पर, तो 31 दिसंबर के नाम पर, तो कोई और इस तरह का, जैसे कि शब ईद के इवेंट आ जाते हैं, तो जनाब पिकनिक के इवेंट आ जाते हैं, तो बहुत ही वो शुरू हो जाते हैं, लोग जाते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी और स्कूल के अंदर, जनाब वो सेरेमनीज हो रही होती हैं, कंसर्ट हो रहे होते हैं, ये जो कुछ हो रहा होता है, आप अपने ज़मीर को से बात करें, आप कुछ ईमानदारी से बात करें कि आपको क्या ये शरीयत और दीन इस चीज़ की इजाज़त देगा। अरे आपसे मैं सवाल करता हूँ, इस तरह के किसी माहौल में अगर कोई ऐसा मजहबी आदमी, दाढ़ी वाला, और आपके उसके सर पर टोपी और इस तरह, मतलब एक मिसाल दे रहा हूं, वो आ जाए, हो क्या हालत हो गए, इनको ही आना चाहिए था, मैं इनको क्यों नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, क्यों नहीं आना चाहिए था, इसलिए नहीं आना चाहिए था कि ये जगह ऐसी नहीं है, यहाँ गुनाह हो रहा है, ये अल्लाह की नफरमानी हो रही है, ये तो मजहबी आदमी है, तो नमाजी आदमी है, ये तो नमाज और निकी की दावत देता है, इसको यहाँ नहीं आना चाहिए था, सही कह रहे हैं, इनको इसको यहाँ नहीं आना चाहिए था, वेरी सॉरी टू से, आपको भी यहाँ नहीं होना चाहिए था। अगर इसका गेटअप रिलीजियस है, मगर ये भी मुसलमान है तो आप भी मुसलमान है, एज ए मुस्लिम आपको भी वहां नहीं होना चाहिए था, बींग अ मुस्लिम यही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी, बींग अ मुस्लिम यही हुक्म आप पर भी था, उसको बिल्कुल नहीं आना चाहिए। नहीं आते इस तरह के लोग इसी जगहों पर, नहीं आपको नजर आएंगे, वही आते जिनकी बस, वो भी इसी तरह के माहौल में आ जाते हैं और कहते हैं, और इनका मजाक भी उड़ाते हैं, तो ये है नहीं है, ये तो मैंने आपकी अपनी मेंटेलिटी आपके साथ शेयर की है। नहीं 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 यार, इनको नहीं, और यार देखो यार, दाढ़ी रख के ये काम कर रहे हैं, आपको पता है ये काम गलत है, दाढ़ी रखकर नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, मगर फेरी सोडी टू से दाढ़ी वाले को भी नहीं, दाढ़ी जिसकी दाढ़ी नहीं उसको भी नहीं करना चाहिए था। क्या झूठ सिर्फ दाढ़ी बोलने वाले को मना है? नहीं, जिसकी दाढ़ी नहीं उसको भी झूठ मना है, बल्कि वो दाढ़ी रखकर एक नाजायज काम से बचा हुआ है, ये तो दाढ़ी मुंडा कर ये भी नाजायज काम कर रहा है, इसको गौर करें। इसी तरह बेपरते कि यो भी आप इस तरह जो मैं आपको कह रहा हूं, तो क्यों ऐसा तमाशा कर रहे हैं हम क्यों अपने अंदर ऐसा माहौल इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि जिसमें गाने बाजे फिल्में और ये सब हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, इस हाल में मौत आ जाए, अल्लाह की पना, अल्लाह की पना, अल्लाह हमारे हाथ पर रहम फरमाए, अल्लाह हमारे हाथ पर रहम फरमाए, अल्लाह बुरी मौत से बचाए, अल्लाह ईमान और आफियत पर मीठे मदीने में शहादत की मौत दे, आका पर दुरूद सलाम पढ़ते रहें, कलीमा पढ़ते पढ़ते काश हमारी रूह निकल जाए, जिसका आखिरी कलाम आखिरी कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपको एक बचत के ताल्लुक से एक डॉक्यूमेंट्री दिखाता हूँ, क्योंकि इस वक्त बिजली की कमी और फिर बिजली का महंगा होना, ये दोनों बहुत बड़े प्रॉब्लम इस वक्त हैं जिसे इस वक्त कौम फेस कर रही है, डेफिनेटली फेस कर रही है। फिर इस ताल्लुक से इंशाल्लाह मैं आपको कुछ मशवरे भी दूंगा। आइए पहले इसकी कुछ रिपोर्ट देखते हैं।
बिजली की बचत कैसे की जाए, इन सात चीजों का ख्याल रखें। दुनिया भर में तवानाई की कीमत में इजाफा हो रहा है, हर कोई ये सोचता है कि इस माह बिजली का बिल कितना आएगा, मगर कुछ उसूल अपनाकर इसमें कमी लाई जा सकती है। बिजली से चलने वाली अशिया को इस्तेमाल करने के बाद मुकम्मल बंद कर दें, इन्हें स्टैंड बाय पर नहीं रखें, मसलन कंप्यूटर टीवी वगैरह। आजकल मार्केट में कम तवानाई से चलने वाले आलात दस्तियाब हैं, इन्हें इस्तेमाल करें, जैसे LED बल्ब वगैरह। एयर कंडीशन का इस्तेमाल कम करें, गैर जरूरी ठंडक पर ना चलाएं, बल्कि ऐसे टेम्परेचर पर चलाएं कि आप इफादियत भी हासिल कर सकें और बिजली की बचत भी हो। मयारी सामान और तारों का इस्तेमाल करें, इससे आपके आलात भी लंबे अरसे चलेंगे और बिजली की बचत भी होगी। मुतबादिल तरीकों का इस्तेमाल करें, मसलन जरूरी नहीं कि हर बार खाना माइक्रोवेव में ही गर्म किया जाए, ये बिजली की खपत ज्यादा करता है। अपने मीटर की रीडिंग करते रहें ताकि आपको अंदाजा हो कि आप कितनी बिजली की खपत कर रहे हैं और इसे कहां पर कम किया जा सकता है। घरेलू पैमाने पर कुदरती तवानाई का इस्तेमाल करें, जैसे सोलर पैनल, जिससे रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया, पंखे और बल्ब वगैरह चल सकें।
यहां प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं एक बिजली सप्लाई करने वाले जो इदारे हैं इनके एक जिम्मेदार से मैंने टेलीफोन पर बातचीत की और अच्छे जिम्मेदार हैं, वहाँ के अथॉरिटी भी इनके पास, तो मैं इनसे इस मौजू पर मशवरा कर रहा था कि मैं कुछ मशवरे देना चाहता हूँ अपने नाजरीन को बिजली की बचत के ताल्लुक से। तो वो सारे मशवरे मैं उनके साथ शेयर कर रहा था कि मैं वैसा ना हो कि मैं आपको मशवरा दे दूँ और रॉन्ग नंबर लग जाए। तो माहिरीन से मशवरा करके काम करने में हमें फ़ायदा हासिल होता है। चंद चीज़ें आपने अभी देख ली हैं। अच्छा, आपको ये इल्म होना चाहिए कि जो टैरिफ रेट कहलाता है, जो हमारे यहाँ किन किन टाइमिंग्स के अंदर यूनिट की चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं, पिक टाइम भी आप उसको कह सकते हैं, ऑफ पिक टाइम भी उसको कह सकते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो 6 और 10 के दरमियान, यानी शाम 6 से लेकर रात 10 के दरमियान का जो टाइम है, ये ऐसा पिक टाइम है कि जिसमें आपके हमारे यूनिट के जो रेट है वो बढ़ जाते हैं। इस दौरान अगर ज़्यादा यूनिट गिरेगा तो आपका जो बिजली का बिल है वो ज़्यादा आता है। अब करें क्या? देखिए, आप और मैं क्या करें ये देखें, ये बहुत सिंपल सी बात, तबसरे बातें, मेरा मशवरा ये है कि इस पर मतलब सम टाइम आप अपना वक्त ज़ाया करते हैं, सम टाइम उमूमी तौर पर। अब बिजली का बिल आपने मैंने ही भरना है, किसी और ने भरना नहीं है। हम लाख पूरा महीना कुर करें, यूनिट ने हमारे चिल्लाने पर भी एक यूनिट कम नहीं देना। वो चिल्लाने पर ज़्यादा गर्मी होगी, ज़्यादा गर्मी होगी ज़्यादा पंखा चलेगा, ज़्यादा यूनिट गिरेगा, ये टेंशन हो जाएगा। अब आपने करना किया, ज़रा तसल्ली के साथ मेरी बात सुने। चंद चीज़ें तो अभी आपने सुन ली जब भी बयान हुआ। ये 6 और 10 के दरमियान मैं ज़्यादा आपको जोर दे रहा हूँ, अदरवाइज पूरे दिन के लिए, होल डे, फुल डे आप इन तमाम तर चीज़ों को एस पर सूरत हाल के मुताबिक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। बट स्पेशली एक ऐसा टाइम के जहाँ पर आपका यूनिट ज़्यादा महंगा हो जाता है, 6 और 10 के दरमियान आप इस्त्री का इस्तेमाल ना करें, आयरन प्रेस चौकों के कपड़े इस दौरान ना करें। जब आप इस्त्री का इस्तेमाल करेंगे 6 और 10 के दरमियान, डेफिनेटली ये आपका पावर ज़्यादा लेगा। 6 और 10 के दरमियान माइक्रोवेव का इस्तेमाल ना करें। आप कहेंगे डिनर का टाइम है, ठीक है, फिर बिल का भी टाइम आएगा। मैं जवाब तो आपके पास भी होगा, लेकिन मैं तो मशवरे दे रहा हूँ आपको, कोई और अल्टरनेट यूज़ कर लें। 6 और 10 के दरमियान माइक्रोवेव का इस्तेमाल ना करें, माइक्रो ओवन का इस्तेमाल ना करें। ये सारी ठीक ठाक ये पावर लेती हैं चीज़ें जब ये चलती हैं। तो एक और मशवरा मैं आपको दूंगा, और एग्जांपल, आपके घर में बिजली चली गई, सो कोई आपके पास अरेंजमेंट नहीं है, ना आपके पास जनरेटर है और कोई यूपीएस है जिससे आपका फ्रिज या डिफ्रिज चल सके। दो घंटे का अमूमन हमारे यहाँ बिजली का अगर ब्रेकडाउन आता है, लोड शेडिंग आती है, तो दो घंटे तीन घंटे फ्रिज हमारे बंद होते नहीं होते, क्या चीज़ ख़राब हो जाती है? नहीं होता। गोश्त खराब हो गया या खाना खराब हो गया, नहीं होता। डेढ़ दो तीन घंटे के अंदर जब फ्रिज हमारा बंद होता है, डीप फ्रीजर बंद होता है, तो कोई एज सच कोई बड़ी खराबी हमारे सामान या फ्रिज में रखी हुई चीज़ों में नहीं आती। तो अगर आप 6 और 10 के दरमियान अपना डीप फ्रीजर और फ्रिज बंद कर दें घंटे के लिए, दो घंटे के लिए, तीन घंटे के लिए, आपकी जैसी सूरत हाल है, तो अब ये इतनी देर तक आपके ये जो यूनिट है ना, ये कम गिरेंगे, ये कर सकते हैं। अच्छा, जो चार्जर हम बहुत ज़्यादा, अच्छा, हम चार्जर लगा कर ही रखते हैं और लाइट जल रही होती है, ये निकाल दें सॉकेट से। पंखों का कम इस्तेमाल, यानी ये कहते हैं एक जगह जमा होकर बैठ जाएं, बिजली का वो लाइटें भी कम जलेंगी। अच्छा, अगर पानी कोई ऐसी है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे टाइम पर ही पानी की मोटर चलानी, तो पानी की मोटर अगर चलानी है पानी खींचने वाली, और मतलब अंडरग्राउंड टैंक भरने के लिए या ऊपर की जो टैंक होता है वो भरने के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप शाम को मोटर चलाएं, 6 से 10 मोटर ना चलाएं आप, इसके अलावा किसी और टाइम में मोटर चलाएं। अब ये एक मैंने ओवरऑल आपके सामने मशवरतन चंद चीज़ें बयान की हैं, کہ یہ وہ چیزیں جس پر آپ غور کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں یہ رشتہ عمران نے 4-10 چیزیں بیان کی ہیں، مگر یہ 10-12 اور چیزیں جو ہمارے آمنے سامنے رکھی ہوئی ہیں ہم اس کو نہ یوٹیلائز کریں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی بجلی کی بل میں کافی کمی آئے گی۔ اچھا اب میں جیسے سولر کا بھی آپ کو انہوں نے مشورہ دیا، آپ نے رپورٹ کے اندر دیکھا، تو میں نے سولر پر بھی ایک بات چیت کی کہ سولر کا کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں سولر یہ ایک قدرتی طور پر انرجی لے کر آپ کو بجلی سپلائی کرتا ہے، یعنی سورج کی روشنی سے یہ پاور لیتا ہے اور آپ کے گھر میں یہ بجلی سپلائی کر رہا ہوتا ہے۔ سولر کا پینل شیٹیں آتی ہیں جس کا آپ نے تصویر بھی ابھی اسکرین پر دیکھی تھی۔ تو 1 kW کا اگر آپ سولر لگاتے ہیں، 1 kW یہ بجلی کی ایک ٹرم ہے، اس کی ایک اپنی اصطلاح چلتی ہے پاور کی۔ تو میں نے جو معلومات لی، دیکھیں میری معلومات صحیح یا غلط ہو سکتی ہے، لہذا آپ کسی تجربہ کار آدمی سے میری دی ہوئی معلومات کو کراس چیک کر کے جو درست ہو اس پر عمل کیجئے گا۔ میں بات صرف آپ کی مطلب یوں سمجھے کہ ایورنیس کے لیے، معلومات کے لیے، تھوڑا سا جگانے کے لیے، چکر نہ کرنے کے لیے، یا کچھ 2-4 راستے بتانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ میں بھی کسی سے معلومات لے کر ہی آپ کو معلومات دے رہا ہوں، میری معلومات آنے میں بھی مجھ سے مسٹیک ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ آس پاس میں ہی اللہ نے چاہ تو معلومات میری رہے گی۔ تو مثال کے طور پر جس کے گھر میں اے سی نہیں ہے، اگر وہ چاہے تو 1 kW کا اگر اس کے پاس چھت ہے، کیونکہ اس کے لیے چھت ضروری ہے، اس کے سورج کی روشنی پڑنی چاہیے، تو 80 گز کے، 120 گز کے چھوٹے بڑے مکانات ہمارے یہاں لوگ رہتے، بہت سارے گھروں میں اس طرح کے گھر بنے ہوئے دنیا بھر میں کہ جہاں پر یہ سولر لگ سکتا ہے اور لگا لینا چاہیے سولر۔ تو 1 kW کا سولر اگر آپ لیتے ہیں تو شاید 125,000، 130,000، یعنی 1,00,000 اور 1,25,000 کے درمیان شاید آپ کو یہ سولر کی کوسٹ پڑے گی۔ اچھا اب یہ ہوگا کیا جب سولر کی کوسٹ پڑے گی، تو اس سے شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کی 3 سے 3,500 روپے کی ماہانہ بجلی کی بچت ایکسپیکٹڈ ہے۔ اچھا یہ جو سولر آپ پینل جس کو میں کہہ رہا ہوں، اس کی جو میں نے معلومات لی ہے، یہ 3 سال میں آپ کی جو بجلی کی جو بچت ہوگی، تو 3 سال میں آپ کی سولر کی پیمنٹ نکل آتی ہے۔ اب یہ جیسا بجلی کا بل، میں ایک جنرل نالج کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اگر کے ساتھ بات کر لیتا ہوں تاکہ کوئی امکان نہ رہے، اگر 3 سال میں آپ کے پاس سولر کی پیمنٹ نکل آتی ہے، تو یہ سولر کی اگر اچھا عمدہ اور اچھے لوگوں سے مشورہ کر کر ایک بہترین سولر پینل اگر آپ لگا لیتے ہیں، تو شاید یہ آپ کو 10-12-15 سال ہو سکتا ہے کہ چلے مجھے تو انہوں نے 10 سے 15 سال کا کہا ہے کہ یہ سولر اچھا چل جاتا ہے، تو 3 سے 4 سال بھی ہو سکتے ہیں آپ کی سولر کی پیمنٹ نکل آتی، تو باقی آپ کا یہ سولر آپ کی بجلی کو لے کر چلے گا۔ لیکن 1 kW کا سولر پینل یہ عموماً اس گھر کو کفایت کرے گا جس میں اے سی نہیں ہے۔ اگر ایک اے سی بھی اگر آپ کے گھر میں لگا ہوا ایئر کنڈیشن، تو شاید آپ کو 3 سے 4 kW کا ایک سولر پینل لگانا پڑے گا، جس کی کوسٹ شاید 4 سے 5 لاکھ روپے کی پڑے گی۔ تو یوں سمجھیے کہ آپ ماہانہ بل پیمنٹ جو کر رہے ہیں، تو آپ نے ایک ساتھ گویا کہ اتنے 2-4 سالوں کا بل پیمنٹ کر دیا، آپ نے سولر پینل خرید لیا، اب سولر پینل سے آپ اپنی بجلی پیدا کر رہے ہیں جو سورج کی روشنی سے آ رہی ہوتی ہے، اور وہ 2-4 سالوں میں شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ سولر آپ کی بجلی وہ سولر کی پیمنٹ نکل آئے، کیونکہ اب اس دوران آپ کو اتنا یونٹ آپ کا بچے گا، اتنا یونٹ بچے گا تو اتنی قیمت بچے گی، اتنی قیمت بچے گی تو اتنے سالوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ ہو جائے۔ یہ میں نے معلومات کی بات کی، اور میں نے اپنے جان پہچان والوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے سولر لگائے ہوئے ہیں۔ میں سولر میری پلاننگ کا بھی ابھی حصہ ہے، اور آج کی انفارمیشن لینے کے بعد میں بھی سولر کے معاملے میں تھوڑا سیریس ہوا ہوں۔ یہ ٹو بی فرینک میں اپنی پرسنل بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں یار، اتنی تو بعض اوقات جب آپ بیان کرتے تو آپ کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یار اپنے کو بھی یہ کرنا چاہیے۔ تو یہ اچھی بچت ہے، اور میں نے یہ پاور سپلائی کرنے والوں سے معلومات دی، تو انہوں نے باقاعدہ ریکمینڈ کیا کہ ہم تو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہم سولر لگائیں۔ پھر کچھ پاور سپلائی کرنے والے اداروں کے ساتھ سولر لگانے والوں کا انڈرسٹینڈنگ بھی کوئی سی ہو جاتی ہے کہ بجلی کے یونٹ وغیرہ، آئی ڈونٹ نو، یہ بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے میرے پاس، لیکن میری تمام تر انفارمیشن جو میں نے آپ کو دیا اس کو کافی مت سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟ اس میں کمی بیشی کم زیادہ پلس مائنس ہونے کا پورا چانس موجود ہے. میرا کوئی سولر کا بزنس نہیں ہے, میری سی کوئی مطلب میرا کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی آپ کو کوئی سراغ دے رہا ہوں. مجھے ایک اچھا خیر خواہی کا والا ایک وہ ملا مشورہ, تو میں نے آپ تک پہنچانے کوشش کی ہے. آپ ایک اچھے ایماندار دیانتدار اور تجربے کار شخص سے اس معاملے میں ضرور مشورہ کریں جنہوں نے اپنے یہاں یہ سارا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں فائدہ دیں گی انشاءاللہ عز و جل. تو جو تھوڑی بہت نالج جو میں نے حاصل کی تھی وہ میں نے ابھی آپ کو بتا دی ہے. کوشش کریں کہ آپ کے جو یونٹ ہیں یہ زیادہ نہ جائیں, کم سے کم یونٹ کے اندر گزار. اگر 700-800 سے اوپر آپ کے مانا یونٹ چلے جائیں گے اور 1000 تک یونٹ آپ کا چلا جائے گا تو آپ کا بجلی کا بل بہت زیادہ آنے کی مطلب وہ ہے کہ بجلی کا بل زیادہ ہو جائے گا. تو جتنا کم سے کم ہو سکے اپنے یونٹ چلائیں. اس لیے میٹر ریڈنگ کو ضرور دیکھیں, آپس میں گفتگو کرتے رہیں یا کیسے گھر چلائیں. ڈیفینیٹلی جب ایسے حالات ہوں گے تو آپ کو اپنے کچن کو دیکھنا پڑے گا یار, کچن میں کون کون سی ایسی چیزیں جو ایکسس ہیں جن کے بغیر گھر چل سکتا تھا, جن کے بغیر میرا کچن چل سکتا تھا. کہ یار یہ نہ بھی ہو تبھی چل جائے گا, یہ ڈبے یہ پاؤڈر یہ نہ چیز لاؤں, یہ ساری مطلب وغیرہ وغیرہ نہ لاؤں, میں نام نہیں لینا چاہتا, یہ نہ لاؤں تو یار نو پرابلم مطلب گھر چل جائے گا, اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. باتھ روم میں دیکھیں یار یہ دو چار چیزیں اگر نہیں لائیں گے تو یار گزارا ہو جائے گا. پہلے بھی جب یہ نہیں تھی تب بھی تو مطلب سب نانا دھونا چلتا ہی تھا, کھانا پینا چلتا ہی تھا. تو یوں بہت ساری ایسی چیزیں آپ گھر کی یوز آپ دیکھیں. ایک بار بیٹھ جائیں, میں تمام فیملی ممبر سے عرض کرتا ہوں, بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر غور کریں کہ کیا ہم کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. غذاؤں پر غور کر لیں کہ بعض اوقات تو کچھ غذائیں ایسی ہیں کہ جن پر واقعی اگر تھوڑی سی روک لگا دی جائے تو وزن بھی صحیح ہو جائے گا, صحت بھی اچھی ہو سکتی ہے اور بہت کچھ مطلب کہ چیزیں کور کی جا سکتی ہیں. تو اپنے بجلی, اپنے کچن, اپنے باتھ روم اور اسی طرح اپنی کلوتھنگ یا جو بھی اپنی باہر سے آنا جانا وغیرہ جو بھی ہوتا ہے ان تمام تر چیزوں کو دیکھیں. مہنگائی کا محض رونا مہنگائی کو کم نہیں کرے گا اور ہمیں کوئی پرسکون زندگی کی طرف نہیں لے جائے گا. ہمیں اپنے روٹین میں, اپنی عادتوں میں, اپنے مزاج میں کچھ چینجز لانی پڑے گی. دنیا لا رہی ہے, آپ اگر لائیں گے تو آپ کو دنیا کے پہلے آدمی نہیں ہوں گے, وہ کو بہت بڑا کارنامہ بھی ہم انجام نہیں دیں گے. ویری سوری ٹو سے, دنیا کر رہی ہے, غور کر رہی ہے, سوچ رہی ہے یار کیا کریں, کیونکہ مہنگائی آج اتنی ہے کل شاید بڑھے, اس کا بھی چانس ہے, نہ بڑھے اس کا بھی چانس ہے. لیکن زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایک چیزیں بڑھ جاتی تو پھر دوبارہ اس کو کم اتنی ایزیلی ہوتی نہیں ہے. وہ بڑھ گیا بڑھ گیا, یہ سمجھو کہ یہ بڑھ گیا. اب ایسا نہیں کہ پیٹرول کم ہو جائے گا تو بہت ساری چیزیں کم ہو جائیں گی. مجھے ایسا چانس لگتا ہے شاید ایسا نہ ہو اور ہوتا نہیں ہے عمومی طور پر. جب جس کو اللہ اب اللہ کی رحمت ہوگی وہ انشاءاللہ اس معاملے میں نرمی اور خیر خواہی کا جذبہ دکھا دے گا. تو بجلی کے تعلق سے میں نے چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی جس سے آپ اپنے بجٹ کو ریڈیوس کر کے اس کو مینٹین کر کے اس کو مینیج کر کے آپ اپنی اس موجودہ آمدنی میں اس طرح گھر چلا سکتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ پرسکون رہیں, بیمار ہونے سے بچیں. ایک تو قدرتی طور پر بندہ کچھ نہ کوئی بیماری آ جاتی ہے, بیماری رحمت بھی ہوتی ہے, لیکن ایسی غذائیں نہ کھائیں جس سے آپ بیمار ہو سکتے ہیں. بعضوں کو کولڈ ڈرنک نہیں چلتا, بعضوں کو کچھ آئٹمس کھانے پینے کی نہیں چلتی, سگریٹ کتنوں کو نہیں چل, سگریٹ تو ویسے ہی نیچے نیچے صحت کو برباد کر دیتی ہے. وہ پان گٹکے کھا رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا عادتیں انہوں نے پالی ہوئی ہوتی ہیں, فاسٹ فوڈ جنک فوڈ طرح طرح کی چیزیں انہوں نے لے کر رکھی ہوئی ہوتی ہیں, مطلب عادت بنائی ہوئی ہوتی ہے جس سے ان کی بیماریاں بڑھتی ہیں. پھر اللہ نہ کرے ٹیسٹ. حال ہی میں نے ایک پیشنٹ کے بارے میں مجھے پتہ چلا تھا, تھوڑے بہت ٹیسٹ ہوئے پیارے اسلام بھائیو, چند گھنٹوں کا ہاسپٹل کا ان کا وزٹ ہوا, چھوٹے موٹے کچھ ٹیسٹ ہوئے, 20-25 ہزار روپئے نکل گئے ان کے, 20-25 ہزار روپئے نکل گئے. کسی ایک اور پیشنٹ کا پتہ چلا, چند گھنٹوں میں اس پیشنٹ کی کوئی چھوٹی موٹی ٹریٹمنٹ تھی 12-15 ہزار روپئے یوں نکل گئے, چھوٹی موٹی چیزوں میں 12-15-20 ہزار. یعنی یہ وہ ایڈمٹ نہیں ہے ابھی ہاسپٹل میں, ابھی پیشنٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوا, جسٹ ایک بیماری ہوئی, پریشانی ہوئی, ہاسپٹل لے گئے, ایمرجنسی وارڈ میں گئے, دو چار ٹیسٹ ہوئے, ایک دو ڈرپیں لگیں گی, رپورٹ آ گئی جناب نارمل ہے, اوکے. پھر کیا ہوا, 20 ہزار روپے, اب بندہ ہی نارمل لا رہا. ہاں आप नॉर्मल कहां से रहे, 20-25 हजार तो निकल गए मेरे। तो यू जो मैंने कहा ना कि अपने आप को ज़हनी दबाव से, डिप्रेशन से, परेशानी से, चिड़चिड़ेपन से और इस तरह की चीज़ों से बचाएं, तवक्कुल इख्तियार करें, अपने रब पर भरोसा करें, अपने रब की रज़ा पर राजी रहने के अल्लाह करे कि हमें आदत नसीब हो जाए और अपने मिजाज को नरमी की तरफ लाएं, हर बात पर मतलब कि वो एग्रेशन ना दिखाएं, हर बात पर चिड़चिड़ापन ना दिखाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें, ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे आपको ब्लड प्रेशर हो जाए, कोलेस्ट्रॉल हो जाए, अल्लाह ना करे कोई और ऐसे अल्लाह ना करे बीमारी हो जाए, और दीगर एहतियातें भी करें ताकि ये ना हो कि अल्लाह ना करे कोई इलाज की वजह से आपकी सारी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाए और बहुत बड़ा खर्चा आजकल इलाज पर आ रहा है, आपको पता है मेडिसिन पर, टेस्ट पर, रिपोर्ट पर, डॉक्टर विजिट पर, उफ बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है। और मतलब बाद अवकात जैसे कि ज़हनी तौर पर लोगों अपने वो परेशान हो जाते, ये भी एक अजीब वो गरीब चलाया वो मतलब कि वो ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए जनाब डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे साइट्रिस्ट जो डॉक्टर कहलाते हैं मायरे नफ्सियात, इनमें कई अफवाह किसे डॉक्टर मिलेंगे, एक एक विजिट के 8-10-12 हजार रुपये ले लेते, घंटा डेढ़ घंटे का इनका होता है, कोई पौना घंटे घंटे का, और उस पर ये आपकी काउंसलिंग करेंगे और काउंसलिंग करेंगे तो आपको लगे सुकून हो गया। मैं आपको फ्री का इलाज बताऊं, दावत इस्लामी का हफ्ता बार इज्तिमा में आ जाया करें जी, आप आकर देखें आपको ज़हनी सुकून ना मिले तो कहिएगा, जब बयान सुनेंगे अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाएंगे, दुआ मांगेंगे, आशिका रसूल बैठेंगे, मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करेंगे, आप मदनी चैनल देखें इंशाल्लाह आपको अल्लाह ने जो ज़हनी सुकून मिलेगा, आप ये बहुत सारी परेशानियों से अल्लाह ने चाहा तो बच भी जाएंगे और सुकून भी नसीब होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, दुनिया की इस वक्त कुल आबादी तकरीबन 7.9 अरब कहलाती है, यानी उससे 8 अरब के आसपास दुनिया में टोटल आबादी कहलाती है। इस वक्त दुनिया में करीब 2 अरब इंसान भूख या गिजायत की कमी का शिकार है, यानी 7-8 अरब में से 2 अरब ये गिजा की कमी का शिकार है, भूख का शिकार है, और जितनी खुराक की पैदावार है वो 11 अरब इंसानों के लिए काफ़ी है, यानी जो अगर दुनिया में इस वक्त तो पैदावार जो हो रही है अनाज की खाने अजनास के ताल्लुक से, उसकी जो पैदावार है वो 11 अरब लोगों को काफ़ी है, 8 अरब के आसपास आबादी और 11 अरब के आसपास अनाज पूरा होने की वो प्रोडक्शन मौजूद है। 2050 में दुनिया की आबादी अंदाजे के मुताबिक 10 अरब पर मुश्तमिल हो सकती है, आज 8 है, 2050 तक शायद 2 अरब बढ़ सकती है, ये रिपोर्ट्स हैं, एक अंदाजे हैं, और अंदाजा है कि उस वक्त भूख और गिजाई किल्लत के शिकार अफराद की तादाद 4 अरब तक हो जाएगी, यानी इस वक्त 2 अरब है वो 4 अरब तक हो जाएगी। दुनिया में जितना रिस्क ज़ाया होता है, खाने पीने की चीज़ें जितनी ज़ाया की जाती हैं, वेस्टेज ऑफ फूड जिसको कहते हैं, वो 3 अरब इंसानों की सालाना ज़रूरत के बराबर है, इतना खाना ज़ाया किया जाता है। दुनिया में हर साल 1.3 अरब टन रिस्क ज़ाया होता है, जो कुल गिजाई पैदावार का 33% है, 33% है। मज़ीद सुनिए, ज़ाया शुदा रिस्क का अगर ज़मीनी इस्तेमाल के हिसाब से जायज़ा लिया जाए तो करीब 1.4 अरब हेक्टर पर उगता है। ज़ाया शुदा रिस्क की मालियत अगर देखी जाए, जो एक अंदाज़ा किया गया है, तो ये तकरीबन 1,000 अरब डॉलर से ज़ायद है, 1,000 अरब डॉलर से ज़्यादा। तरक्की याफ्ता ममालिक में हर शख्स औसतन 100 किलो 100 केजी रिस्क हर साल ज़ाया करता है, ये एक रिपोर्ट है, मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ, कमी बेशी और ऊपर नीचे प्लस माइनस की डेफिनेटली इसमें गुंजाइश मौजूद होती है। हर साल 31 लाख 31 लाख बच्चे भूख की वजह से हलाक हो जाते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें हमें नंबर वन, हमें सबसे पहले रिस्क को ज़ाया करने से बचना है, ये जो हमारे रिस्क को ज़ाया करने का जो रुझान है इससे अल्लाह ताला करेगा बचें, और हमें अल्लाह पाक बरकतें खाने पीने में भी अता फरमाए, हमारी जहाँ बारिश रुक जाती हैं अल्लाह वो बारिशें भी अता करे, हमें गुनाहों से अल्लाह ताला बचने की तौफीक अता फरमाए। इसमें अगर हम कुरान करीम की आयत नंबर 41 सूरह रूम पारा 21 में है کہ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اب اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ قحط سالی، بارش نہ ہونا، پیداوار کی قلت، تجارت کا نقصان، بے برکتی، طرح طرح کی بیماریاں، سمندری طوفان اور مختلف آزمائشیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، بل اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ گناہ کے باعث رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اب گناہ چھوڑنے، ہمیں نمازیں پڑھنی ہے پابندی کے ساتھ، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، وہی رزاق ہے، وہی رزق دینے والا ہے، اور تنگ دستی بھی وہی دور فرمائے گا، رزق بھی وہی برکت دے گا۔ اب نماز قضا کرے، گالیاں دے، غیبتیں کرے، چگلیاں کرے، ظلم کرے، رشوتیں کھائے، رشوتوں کا لین دین کرے، سود کھائے، حرام روزیاں کمائے، اور طرح طرح کے ظلم و زیادتی کرے، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، موسیقی، بے پردگی، بے شرمی، بے حیائی، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو اور کہے کہ میرا رزق، تو دوبارہ سنیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بے شک بندہ گناہ کے بعد رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بس سمپل سی بات ہے، اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی ظاہر باتیں چیزیں، لیکن میری مجھے قرآن بھی کلوز کرنا ہے۔ آخر میں پیارے اسلام بھائیو، ایک بات بیان کرتا ہوں رزق میں برکت کے تعلق سے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی۔ فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے، تسبیح ملائکہ کی اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے، یعنی فرشتوں کی تسبیح ہے اور جس پہ روزی دی جاتی ہے۔ دنیا آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر، وہ کیا ہے؟ طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر، یعنی فجر کا وقت جب طلوع ہو، یعنی فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے، تو 100 بار یہ کہنا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ آپ بھی کہہ لیں سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ مشکل نہیں ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ ان صحابی کو 7 دن گزرے تھے کہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور عرض کی، حضور دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہو کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات یہاں پر بیان کی گئی، جو بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرات المناجی جلد 6 پیج نمبر 9 پر تحریر فرماتے ہیں، بعض بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اول دن میں، ابتدائی دن میں، جب پہلی بار گھر میں ہوتے تو بسم اللہ اور قل ہو اللہ پڑھ لیتے، کہ اس سے گھر میں اتفاق بھی رہتا ہے اور رزق میں برکت بھی۔ شروع کے دن میں گھر میں ہی، جب گھر میں ہیں تو شروع شروع میں یہ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ اخلاص، قل ہو اللہ احد، پوری سورت پڑھ لیں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ ابتدائی دن میں پڑھ لیں، شروع میں ہی گھر میں اتفاق بھی رہے گا، اللہ نے چاہ تو رزق میں برکت بھی آئے گی۔ اجازت دیجئے، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو گناہوں سے بچائے، ہمارے رزق میں بھی برکت دے، ہمارے رزق کے حلال میں اللہ برکت دے، تنگی اور پریشانی سے اللہ بچائے، اور اس مہنگائی کی پریشانی سے بچائے، دیگر آفات و بلیا سے اللہ آپ کی میری ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہے، انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کا بھی موقع ملتا رہے گا۔ نماز کی پابندی ضرور کیجیے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔